الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآن سے تعلق میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ہمارے آج کے سلسلے کا موضوع ہوگا رمضان اور قرآن۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، کیونکہ فطرت انسانی یہ ہے کہ جو چیز انسان کے اپنے پاس موجود ہوتی ہے اس کی ویلیو، اس کی اہمیت کچھ کم ہوتی ہے، اور جو چیز دور ہوتی ہے یا دیر سے ملتی ہے اس کی اہمیت کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ واضح کر دیا گیا کہ رمضان اور قرآن دونوں کا ایک خاص تعلق ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ رمضان کا تعارف قرآن سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، یعنی رمضان کا ایک تعارف تو یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان کی شان اور اس کی شرافت قرآن سے ہے، قرآن اس میں نازل ہوا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں، قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی، مکمل قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ بیت العزت اسی آسمان پر ایک مقام ہے، یہاں سے وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق جتنا جتنا اللہ تبارک و تعالی کو منظور ہوا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لاتے رہے، اور یہ نزول 23 سال کے عرصہ میں پورا ہوا۔ رمضان وہ واحد مہینہ ہے कि जिसका नाम कुरान पाक में मौजूद है, कुरान मजीद से निस्बत की वजह से माहे रमजानुल मुबारक को अजमत व शराफत मिली। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहां से एक नुक्ते की बात समझिए कि जिस वक्त को किसी अजमत व शर्फ वाली चीज से निस्बत हो जाती है, किसी बुलंद मर्तबा चीज से उस वक्त का ताल्लुक हो जाता है, तो वो वक्त कयामत तक शर्फ वाला हो जाता है। इसीलिए जिस दिन और घड़ी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से या आपकी मेराज से निस्बत है, तो वो अजमत व शर्फ वाले हो गए। जैसे हजरते आदम अलैहि सलातो व सलाम की रोजे जुमा पैदाइश पर जुम्मा का दिन अजमत वाला हो गया, इसी तरह जिस दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उस दिन को भी शर्फ मिला मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलाम की निस्बत से। आप मेराज पर तशरीफ ले गए, उस दिन और उस तारीख को भी हजूर की निस्बत की वजह से शर्फ और अजमत मिली। रमजानुल मुबारक में कुरान नाजिल हुआ तो मुफस्सिरीन ने कहा कि कुरान के नुजूल की वजह से इस माहे मोहतरम रमजानुल मुबारक को अल्लाह तबारक व ताला ने शर्फ और अजमत अता फरमाई। और दूसरा तारुफ ये है कि शब्बे कदर रमजानुल मुबारक में है। शब्बे कदर इस महीने की एक खास रात है जो इज्जत व अजमत वाली रात है, और इसकी शान के बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसे शब्बे क़द्र में उतारा। कुरान मजीद को लोहे महफूज से आसमाने दुनिया की तरफ यक बारगी यानी एक ही मर्तबा पूरा कुरान ये शब्बे क़द्र में उतारा गया, और फिर इसके बाद 23 साल के अरसा में अल्लाह तबारक व ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसे नाजिल फरमाया। शब्बे कदर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका ताल्लुक कुरान से है। अलामा कुर्तुबी ने इस रात को लैलतुल कदर कहने की वजह कुछ यूं बयान फरमाई, फरमाया इस रात को लैलतुल कदर का नाम दिया जाता है, उसकी वजह यह है, लिअन्नहु अन्ज़ला फीहा किताबन ज़ा क़द्रिन अला रसूलिन ज़ी क़द्रिन अला उम्मतिन ज़ात क़द्रिन, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने इस रात में कुरान नाजिल फरमाया जो अजमतों वाला कलाम है, और ये कलाम ये कुरान अल्लाह तबारक व ताला ने कदरों मंजिलत वाले रसूल पर नाजिल फरमाया, और ऐसी उम्मत पर जो कदरों मंजिलत वाली उम्मत है। उलमा इकराम रमजानुल मुबारक के बारे में फरमाया करते हैं कि ये सैयदुश शुहूर है, सारे महीनों का सरदार, जैसे जुमातुल मुबारक ये दिनों का सरदार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया, और शब्बे कदर सब रातों की सरदार है। ये महीना हमें ये दावत देता है कि तुम अपना ताल्लुक कुरान से मजबूत कर लो, क्योंकि कुरान इस महीने में नाजिल हुआ है। गोया इस महीने का कुरान के साथ एक ताल्लुक है, एक रिलेशन है, कनेक्शन है, और ये महीना हमें इस बात की तरफ दावत देता है कि तुम भी कुरान से अपना जो कनेक्शन है उसे मजबूत कर लो। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, इस آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی تین شانوں کو بیان فرمایا، ایک ہدل للناس، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری بات وبینات من الہدیٰ، روشن نشانیوں پر مشتمل ہے، والفرقان، اور فرمایا حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. قرآن پاک کے کم و بیش 23 نام ہیں، اور یہاں قرآن مجید کا ایک دوسرا مشہور نام الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والا ذکر کیا گیا. سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندہ پر جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہو. گویا فرقان کہتے ہیں حق و باطل میں فرق کرنے کا ایک پیمانہ. یہ قرآن ہمیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا سکھاتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، اور یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب اللہ نے اپنے بندہ خاص پر نازل فرمائی، اور وہ بندہ خاص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں جو سب سے بڑا معجزہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا کیا وہ قرآن ہے. یہ اللہ کی کتاب بھی ہے، یہ اللہ کا کلام بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا نور بھی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا. دو چیزیں بھیجی، ایک برہان جو اللہ کی ذات پر دلیل، اور دوسرا نور ہے یعنی قرآن ہے. عام اعلان فرما دیا یا ایوہ الناس، اے لوگو تمہارے پاس وہ تشریف لائے جو سر تا بقدم اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کی دلیل ہیں، جن کی صداقت پر ان کے معجزے گواہ ہیں، اور وہ منکرین کی عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں. جس قدر معجزے پہلے پیغمبروں علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے، ان سے زائد حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے، بلکہ سر تا بقدم اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور ذات و صفات پر حضور دلیل بن کر اس دنیا میں تشریف لائے. اور دوسری چیز فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا. روشن نور سے مراد قرآن پاک ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو ملا ہے. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی واضح دلیل ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا نور ہے. قرآن میں دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے. قرآن نے چیلنج بھی کیا اور اپنی ذات کو منوا بھی لیا. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا، تو اس جیسی ایک سورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. چیلنج پورا قرآن لانے کا تھا لیکن وہ نہ لا سکے، پھر 10 سورتیں لانے کا ہوا وہ بھی نہ لا سکے، پھر ایک سورت کا چیلنج کیا گیا. اگر تم کہتے ہو کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے تو اس جیسی ایک سورت لے آؤ، نہ لا سکے، پھر یہ بھی چیلنج ہوا کہ اس جیسی ایک آیت ہی لے آؤ، لیکن وہ اس چیلنج پر بھی दलील न दे सके। कुरान का मौजजा होना ऐसा बाकमाल है कि कोई ईमान अगरचे न लाया हो, लेकिन मुसीबत आने पर वो भी मानता हुआ नजर आया। कसीर मिसालें मौजूद हैं जिन्हें अहले नजर ने देखा। कुरान के अल्फाज में, आयात बज्जिनात में, हरूफ में ऐसी तासीर है जो सुनता है वो सुनता चला जाता है। कुरान के मानी मफाहीम को समझता हो, तफसीर जानता हो या ना जानता हो, तर्जुमा समझता हो या ना समझता हो, जब कुरान सुनता है तो कुरान की अपनी एक हैबत और जलाल है कि फिर वो सुनता ही चला जाता है और उसके वजूद और उसकी रूह के अंदर एक अजीब लज्जत उतर जाती है। फिर बार बार दिल करता है कि पढ़ता रहूं और सुनता चला जाऊं। एक रात अबू सुफियान, जबकि अभी ईमान न लाए थे, और अबू जहल और तीसरा अखनस बिन शुरैक, ये अपने अपने घरों से निकले रसूल अकदस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुरान सुनने के लिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में तहज्जुद पढ़ रहे थे। हर एक अलग अलग मकाम पर बैठ गया और किसी को दूसरे का इल्म न था कि वो भी यहां पर मौजूद है, और छुप कर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो तिलावत कुरान फरमा रहे थे, ये उसे सुन रहे थे। यहां तक कि सुबह हो गई, सुबह तक सुनते रहे, फिर लौट आए। रास्ते में जब ये आ रहे थे, इनकी आपस में एक दूसरे से मुलाकात हो गई। मामला समझ गए कि अबू सुफियान भी कुरान सुनने आए, अबू जहल भी कुरान सुनने आया, और अखनस बिन शुरैक ये भी हजूर नबी करीम अलैहि सलाम का कुरान सुनने के लिए यहां आए। एक दूसरे को मलामत करने लगे। बहरहाल तय ये हुआ कि आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बेअकल अवाम अगर ये बात देख ले और उनको पता चल जाए तो फिर कुरान की सदाकत और हकानियत पर ईमान ले आएंगे, वो भी कुरान सुनने आएंगे और फिर वो ईमान वाले हो जाएंगे। उनको रोकने के लिए इन्होंने ये तय किया कि हम सबको रुकना होगा, अपने अपने घर चले गए। अगला दिन हुआ, फिर वही रात आई। उस रात में ये फिर दोबारा एक दूसरे से छुप कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत कुरान को सुनने के लिए वहां पहुंचे। रात भर सुनते रहे, सुबह हुई, अपने अपने घर की तरफ लौटे। रास्ते में फिर मुलाकात हो गई, वही मलामत, वही मुआहदा, फिर लौट आया। और जब तीसरा दिन हुआ, तीसरी रात में भी फिर यही अमल किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुनने के लिए आ गए। और जब रात भर सुनने के बाद वापस लौटे, फिर तीनों की मुलाकात हो गई। अब एक दूसरे से कहने लगे, हम मुसलसल आपस में मुआहदे कर रहे हैं कि लौट कर ना आएंगे, अब पुख्ता अहद कर लो कि लौट कर ना आएंगे। सुबह हुई तो अखनस बिन शुरैख ने असा लिया, अबू सुफियान के घर पहुंच गया। उससे पूछा, अबू हंजला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आपने मुसलसल 3 रातें कुरान सुना है, उसके बारे में आपकी राय क्या है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, कै अबू सालबा, बखुदा मैंने बास चीजें तो ऐसी सुनी हैं जिनके मानी और मफहूम मतालिब मैं नहीं जान सका, यानी मुझे मालूम नहीं। अखनस बोला, मेरा भी यही तासुर है। गोया दोनों ने एक हद तक कुरान की सदाकत का एतराफ कर लिया। फिर अखनस वहां से उठा तो अबू जहल के पास पहुंचा। उसके घर आकर यही सवाल किया कि हम 3 शब मुसलसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम सुनते रहे, इस कलाम के मुतालिक तुम्हारी राय क्या है? अबू जहल ने कहा, असल किस्सा यह है कि शर्फो इज्जत के मामले में हमारा बनी मनाफ के साथ एक तनाजा चला रहा है। उन्होंने सखावत व मेहमान नवाजी की इब्तिदा की और इसका मुजाहरा करने लगे, तो हमने भी वही शुरू कर दिया जो वो कर रहे थे, तो हम भी उनके बराबर रहे, गोया कि हमने मुकाबला किया। तो अब इस खानदान ने यह दावा कर दिया है कि हम एक नबी हैं जिन पर आसमान से वही आती है, हम उसकी मिसल कहां से लाएं? बखुदा उस पर कभी ईमान न लाएंगे और ना उसकी तस्दीक करेंगे। अखनस ने जब यह सुना तो उठकर चला गया। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, बताने की बात यह है, गोया अबू जहल ने यह एतराफ कर लिया कि कुरान की अजमत व सदाकत तो शक व शुबा से बाला तर है, मगर उसे तस्लीम करने में खानदानी रकाबत आड़े आती है। ये मुनकिरीन जो कुरान की अजमत का इकरार करने के बावजूद दौलत ईमानी से महरूम रहे, दर हकीकत कुरान की इस आयत के मिसदाक हैं जो फिरौन और उसकी कौम के बारे में नाजिल हुई। अल्लाह जल्ला मजदहू ने इरशाद फरमाया, फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरतन कालू हाजा सिहरुम मुबीन وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين। फिर जब हमारी निशानियां आंखें खोलती उनके पास आई, बोले ये तो सरी जादू है, और उनके मुनकिर हुए और उनके दिलों में उनका यकीन था जुल्म और तकब्बुर से। तो देखो कैसा अंजाम हुआ फसादियों का। अल्लाह तबारक व ताला ने फिरौन और उसकी कौम के बारे में बताया कि मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम जब इनके पास अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से निशानियां लेकर आए, इन्होंने निशानियों को देखा लेकिन मानने से इनकार कर दिया। दिल में यकीन था कि ऐसी निशानियां किसी इंसान की तरफ से नहीं हो सकती, ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ही है, ये नबी का मौजजा है। देख भी रहे थे, दिल मान भी रहा था, लेकिन जुल्म और तकब्बुर की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। कहा यही हाल इन कुफार कुरैश का है, सब कुछ देख भी रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मौजजात लेकर आए हैं वो सब कुछ इनके सामने है, देख रहे हैं, दिल तस्लीम भी कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके मानने से इनकारी हैं। खानदानी रकाबत माने है, आड़े आ गई है, इसलिए तस्लीम नहीं कर रहे कि अबाओ अजदाद का दीन हम कैसे छोड़ दें। हालांकि ये बात समझ में आ रही है कि हजूर नबी करीम अलैहि सलाम जो दीन लेकर आए हैं वो दीन हक है, और कुरान का जो असर है अपने दिलो दिमाग में महसूस कर रहे कि बार बार मुआहदों के अगली रात फिर आ जाते हैं सुनने के लिए। तो कुरान की अपनी एक तासीर है, अपनी एक हैबत और जलाल है जो अपने सुनने वाले के दिल के अंदर उतर जाती है, और फिर बंदा तस्लीम किए बगैर नहीं रह सकता। हर अकलमंद इंसान को चाहिए कि वो दूसरों के हाल और अंजाम से इबरत व नसीहत हासिल करे। हजरत असद बिन जुरारा अंसारी खजरजी अकाबिर साहबा में से हैं, अभी ईमान न लाए थे, अपने साथी जकवान बिन अबद कैस के साथ किसी काम से मक्का मुकरमा आए। यहां रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे, आपने उन्हें कुरान पढ़कर सुनाया, दावत इस्लाम पेश की। दोनों हजरात कुरान सुनना था उसी वक्त ईमान ले आए, मुसलमान हो गए। ये दोनों यहां पहले खुश नसीब इंसान हैं जो इस्लाम की खबर लेकर मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए। कुरान पढ़ने के एतबार से हो, सुनने के एतबार से हो, लिखने या देखने के एतबार से हो, ये मौजजा है। कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए, कुरान पढ़ते चले जाइए। कुरान से जो मोहब्बत करता है कुरान उसके दिल में उतर जाता है, और फिर सिर्फ दुनिया में ही नहीं, कुरान कल बरोज़ कयामत भी इसके हक में अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा और बख्शिश का जरिया बन जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कुरान।